कैसे चले प्यार प्रभु का लुटाते चले
देते चले प्यार देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले।
अच्छा, सुबह से लेकर अभी तक का समय अच्छा रहा? ये आगे वाले ग्रुप यस बोलने में बहुत अच्छे हैं। तो अभी एक महत्वपूर्ण विषय पर फिर से हम सभी एक दूसरे से कुछ चर्चा करेंगे, जिसमें आपका भी थोड़ा इनपुट रहे तो अच्छा है। रिश्ते कितने जरूरी हैं? कितने जरूरी हैं? हैं जरूरी या नहीं? जरूरी है। रिश्ते अच्छे होते हैं तो सुकून होता है, या रिश्ते कैसे भी होते हैं तो सुकून बना रहता है? अच्छे होते हैं तो। आज हम अगर इस विषय पर बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आजकल इसकी आवश्यकता है ना? अच्छा, कौन कौन से प्रकार के रिश्ते होते हैं हमारे पास? हाँ जी, किस किस प्रकार के रिश्ते, कौन कौन से रिश्ते हैं आप सबके पास? हाँ जी जी, पति पत्नी का रिश्ता अर्थात फैमिली रिलेशनशिप्स, और भाई बहन का फैमिली, और फैमिली रिलेशन के अलावा कोई और रिलेशंस हैं जी? प्रोफेशनल रिलेशंस जी, और जी फ्रेंड्स के साथ जो कि सोशल रिलेशनशिप है, उसके अलावा जी सॉरी गुरु शिष्य का रिलेशनशिप, ओके, और स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, और कोई रिलेशनशिप जो नए नए आए हैं ना वो बताएंगे। हाँ जी, आत्मा परमात्मा का रिश्ता, ओके, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, और उसके अलावा कोई रिलेशन जी? हाँ, जरा उठना बच्चे, उठना, जोर से बोलो, खुद के साथ रिलेशनशिप। क्या अर्थ है खुद के साथ रिलेशनशिप माना? हाँ, क्या नाम है आपका? तरुण, जोर से ताली बजा दो एक बार तरुण के लिए। थैंक यू तरुण। अक्सर ये जवाब बहुत लेट आता है या नहीं आता है, लेकिन आज बहुत जल्दी मिल गया। एक होता है फैमिली रिलेशंस, एक होता है प्रोफेशनल रिलेशन, तीसरा है समाज में हमारा सोशल रिलेशनशिप, मित्रों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, एक होता है भगवान के साथ, और एक है स्वयं के साथ। हमारा रिश्ता हमारे अपने के साथ कैसा है? अपने साथ अपना रिश्ता निभाना क्या होता है? अपने साथ अपने रिश्ते का मतलब होता है अपने मन, बुद्धि और संस्कारों को पूर्ण रीति से जानना, समझना, और अगर मुझे अपने से बात करके कोई काम करवाना है, मन को तैयार करना है, तो वो मैं कर पा रही हूं, या फिर मन को समझा पाते हैं, या मन से रूबरू हो पाते हैं, या अपनी आत्मा से जुड़ पाते हैं, इसका मतलब हमारा कुछ रिश्ता अपने साथ है। अगर मेरा मन मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, कोई खुश करता है हम खुश हो जाते हैं, कोई नाराज करता है हम नाराज हो जाते हैं, कोई हमें रिमोट कंट्रोल की तरह दूसरे व्यक्ति चला रहे हैं, मेरा तो अपने ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, आप थोड़ी सी महिमा मेरी करेंगे तो मैं खुश, अगर आपने नहीं किया तो मैं नाराज, इसका मतलब मेरा मन, उसकी स्थिति आप पर निर्भर है। आपने दी खुशी तो है, आपने नहीं दी तो नहीं है, इसका मतलब मेरा अपना तो कोई स्टॉक है ही नहीं, ऐसा हो गया ना? लेकिन निर्भर कौन होते हैं? निर्भर होते हैं वो जो कमजोर होते हैं। हम सभी यहां पर सशक्त आत्माएं बैठी हैं। कौन कौन यहां सशक्त आत्मा बैठी है? कौन कौन सशक्त है? सभी सशक्त हैं, लेकिन कभी कभी बीच में मन बोलता है कहां है शक्ति, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अभी हम देखते हैं, अभी देखो, जब भी हम रिश्ते निभाने के, रिश्ते कभी भी बाहर नहीं होते हैं। जब रिश्तों को निभाने की बात आती है, उसका बाहरी रूप तो बाद में आता है, वो मैनिफेस्ट बाद में होता है, एक्सप्रेस बाद में होता है, लेकिन सबसे पहले रिश्ता तो हम यहां क्रिएट कर रहे हैं, यहां क्रिएट कर रहे हैं, अपने मन में क्रिएट कर रहे हैं। निभाना है या नहीं निभाना है, कौन से व्यक्ति के साथ मेरा रिश्ता कैसा है, वो मेरी सोच पर निर्भर करता है, किसके साथ मैं कैसी सोच को एक्सचेंज कर रही हूं। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आए और बहुत दिनों के बाद आए हैं, तो आपने कहा बैठिए बैठिए, तो वो बैठ गए। आपने सोचा एक ही बारी तो बोला था बैठने के लिए, बैठ ही गए। फिर हमने कहा नहीं नहीं प्लीज, भोजन तो आपको करके ही जाना पड़ेगा, ऐसे कैसे जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, बहुत प्यार से कह रहे हैं तो भोजन भी करके जाएंगे। देखा एक ही बारी तो बोला था भोजन करने के लिए, इतनी जल्दी मान गए। अब हम जाते खाना बनाने, मजबूरी से कुकिंग कर रहे हैं, लेकिन थॉट अंदर में क्या चल रहा है, ओहो एक ही तो संडे मिलता है, उसमें भी आ गए, इतने सारे काम होते हैं, समझना तो चाहिए, एक बार बोला था बैठ गए, एक बार बोला खाना भी स्वीकार कर लिया, इनको कुछ तो समझ होनी चाहिए, हमें भी एक ही छुट्टी मिलती है। कर तो रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, अंदर से और बाहर से अलग अलग वाइब्रेशंस हैं। सामने वाले तक क्या पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा, कौन सी वाली एनर्जी पहुंचेगी, जो हम बोल रहे हैं वो या जो हम सोच रहे हैं वो। जो हम सोचते हैं ना, उसके वाइब्रेशंस ज्यादा स्ट्रांगली पहुंचता है सामने। इसीलिए जो मेहमान भी आए, उनको भी क्या फील होगा, भले हमने खाना बना के दिया, उनसे बातचीत भी करी, फिर भी उनको जाते जाते ऐसा लगेगा कि ये ना फलाने व्यक्ति, भले उन्होंने हमें खाना खिलाया, परंतु मुझे ऐसा लगा कि इनको ज्यादा खुशी नहीं हुई है हमसे मिलके। वो जो लगना था ना, वो क्या था, वो एनर्जी के वाइब्रेशंस थे। आप में से कौन कौन है जिनको सोचना कुछ और बोलना कुछ आता है? आज समय ही कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें हम बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और सोचते कुछ तीसरा है। सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। इससे क्या होता है, ये जो ड्यूअल वाइब्रेशंस हम क्रिएट करते हैं और भेजते हैं, तो हर बार जब जब हम ऐसा ड्यूअलिटी करते हैं, जब जब ये दोहरे वाइब्रेशंस के बीच में फंसते हैं ना, तब तब हमारी आत्मा डिप्लीट होती है, हमारी एनर्जी कम होती है, हमारी शक्तियां घटती हैं, हमारी ऑनेस्टी घटती है। चलो एक दो दिन की बात होती तो समझ में आता, एक दिन दो दिन तीन दिन, महीना साल सालों निकल गए, अब वो मेरी नेचर बन गई। हमारे अंदर एक टेप रिकॉर्ड बजता रहता है, एक ऑडियो और एक वीडियो सदा ही चलता रहता है, चलता है ना, कुछ ना कुछ ऑडियो और वीडियो के रूप में हमारे मन में सदैव चलता है, और जो हम बोल रहे हैं वो अलग है। तो मेरे इधर के ऑडियो वीडियो से इधर की जो वाणी है, दोनों के वाइब्रेशंस में अंतर है। इसलिए आप देखो कई बार होता है, ऊपर ऊपर से कोई मीठा बोलते हैं ना, मीठा मीठा बोलते हैं, मान लीजिए मैं मीठा मीठा बोल रही हूं, परंतु अंदर मेरे अंदर कुछ और चल रहा है, आपको क्या लगेगा, मीठा लगेगा, नहीं लगेगा। आप कहेंगे ऐसे ही बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये ऐसा सोच रहे होंगे, क्लियर वाइब्रेशंस पहुंचता है। तो अगर मुझे मीठा बनना है, क्योंकि संबंधों में जब हम आते हैं तो मधुरता का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन हम मधुर कैसे बने, मीठा मीठा बोलने से मधुरता महसूस नहीं होती है। मीठा बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक बहुत अच्छी बात ईश्वरीय वाणी की सुनते हैं कि अपने स्वभाव और संस्कारों को सरल अगर बना लेते हैं, स्वभाव और संस्कारों में सरलता लाते हैं। सरल आत्मा, मधुर आत्मा साधारण बोल भी बोलेगी ना, आपको मीठे लगेंगे। मीठा मीठा बोलने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम प्रयास के साथ मीठा बोलते हैं ना, तो थकावट होती है, फिर लोग कहते हैं अब ये ड्रामा मेरे से ज्यादा नहीं होगा, हम जो हैं जैसे ऐसे ही हैं। जो चीज मेहनत लग रही है, इसका मतलब मेरे अंदर वो स्टॉक नहीं है। बाहर से लाकर थोड़ी बहुत कोशिश बुद्धि के द्वारा की जा रही है, लेकिन वो कोशिश सारा दिन तो हम कोशिश में नहीं बिता सकते ना। तो इसलिए अगर मुझे मधुरता का गुण लाना है, तो स्वभाव और संस्कारों में सरलता, अर्थात इजी नेचर, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। ज्यादातर बातों में ओके, कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसा हुआ अगली बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं। हर बात में जटिल संस्कार नहीं होना चाहिए हमारा। जटिल संस्कार का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई छोटी सी बात हो गई, कैसे हो गया, क्यों हो गया, हो कैसे गया, किसने किया, कर कैसे दिया, बोल कैसे दिया, क्यों बोल दिया, क्या समझ रखा है आपने आपको और क्या समझ रखा है मुझे। जटिल संस्कार, संबंधों में कड़वाहट पैदा होती है जटिल संस्कारों से। टाइट संस्कार ना हो, इजी। और इजी का मतलब ये नहीं होता है हम जो नुकसान हो रहा है होने दें, ये उसका अर्थ नहीं होता है। इजी नेचर सरलता का अर्थ है कि हमें पता है हम सारी मेहनत कर रहे हैं सब कुछ व्यवस्थित और ठीक ठाक रखने की, उसके बाद भी सामने वाला भी कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है, वो अपनी क्षमता के अनुकूल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ फिर भी हो जाती है, तो इट्स ओके, चलो आगे से ध्यान रखेंगे, मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन। ये सरलता की नेचर है, डोंट गेट स्टक देयर। जब हम स्टक हो जाते हैं ना, किसी चीज में अटक जाते हैं, ये जो अटकने का संस्कार, रुकने का संस्कार, पकड़ने का संस्कार, मन में बातें भरने का संस्कार, अगर इनमें से कोई भी एक संस्कार हमारे अंदर है, तो रिश्तों में मधुरता या समरसता हम नहीं बना सकते हैं। तो चेंज कहाँ लाना है, चेंज कहाँ लाना है? हाँ, कुछ लोग डिफिकल्ट होते हैं, हर एक के अपने अपने संस्कार हैं। कुछ लोग डिफिकल्ट हैं, उनके जटिल संस्कार हैं, कहना नहीं मानते हैं, समझते नहीं है, लोग तो ऐसे हैं पर मैं कैसी हूं, मैं कैसी हूं। क्योंकि आज हम दूसरों के सामने अगर कहते हैं मुझे कोई शांति दे तो मिले, ये ठीक हो जाए तो मुझे शांति मिले, ये ठीक हो जाए तो हमारे जीवन में खुशियां लौट जाए, क्योंकि हर एक के जीवन में एक या दो नाम ऐसे जरूर होते हैं जो कहते हैं अगर ये व्यक्ति थोड़ा सा बदल जाए ना, मेरा जीवन कहां का कहां पहुंच जाए, बस ये एक आत्मा ठीक हो जाए ना, हमारा जीवन सुखद हो जाए। और वही सारा हिसाब किताब तो वही पूरा हो रहा है। तो इसलिए शुरुआत अपने से ही करनी पड़ेगी। सुबह भी बात हुई थी ना, टकराने से कौन कमजोर हो रहा है, हम खुद कमजोर हो रहे हैं। तो इसलिए अपनी सेहत के लिए, अपने मन की शांति के लिए शुरुआत यहां से करती हैं। अभी जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब हम रिश्तों की बात करते हैं, सबसे पहले उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है कम्युनिकेशन। रिश्तों में कम्युनिकेशन, जी, नुकसान सामना करना पड़ता है, लोग हमें बुद्धू समझते हैं अच्छा बनने से, अच्छा सीधे साधे समझते हैं। आपको पता है आज के समय में, चलो लेट्स क्लियर द डेफिनेशन, अच्छे का मतलब क्या होता है, अच्छे का मतलब क्या है? हम अच्छे हैं, लोग हमें उल्टा समझ रहे हैं। मेरे हिसाब से तो मैं अच्छी हूं, लेकिन जो अच्छाई है उसके हिसाब से मैं अच्छी हूं? लेट्स चेक एक बार। एक बहुत अच्छी आध्यात्मिकता में यहां पर हम लोग सीखते हैं, परख शक्ति एक होती है। जैसे 7 डेज का कोर्स अगर आपने किया हो या कभी करें तो तो उसमें एक अष्ट शक्तियां आती है जो हमारे अंदर होती है। उसमें एक शक्ति है परख शक्ति। परख शक्ति हमको बताती है कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या नहीं अच्छा कर रहे हैं। या तो हमारे अंदर खुद की वो समझ विकसित हो कि हम क्या वाकई अच्छे हैं। अच्छे का मतलब सिर्फ पांव पड़ना अच्छा नहीं होता है, एक गाल पे करो तो दूसरे में दिखाना ये अच्छाई नहीं होती है, परंतु अच्छे का मतलब उस समय उस परिस्थिति उस कार्य के लिए जो सबसे बेस्ट है वो मुझे करना है। क्या मैं वो कर रहा हूं? मेरे हिसाब से मैंने किया, अब लेट मी चेक वंस, एक दो फीडबैक भी लेके देख लेते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर सही करने के बाद भी लोग आपको आपके प्रति कुछ बोलते हैं, कुछ फायदा उठाते हैं, वो कितना फायदा उठा लेंगे, कितना फायदा उठा लेंगे? हम कई बार एंडोर्समेंट चाहते हैं, एंडोर्समेंट। जैसे शिव खेड़ा जी ने अपनी बुक में एक बहुत अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा व्हाई डू वी नीड एंडोर्समेंट ऑफ पीपल ऑफ व्हाट वी डू इज राइट। हम जो अच्छा कर रहे हैं उसकी मुझे ठप्पा की जरूरत क्यों है? लोग माने कि मैं अच्छा कर रही हूं, लोग मुझे अच्छा समझें, लोग मुझे राइट समझें, ये एंडोर्समेंट की मुझे आवश्यकता ही क्यों है? क्या मुझे अपनी एंडोर्समेंट मिली? सबसे पहले खुद चेक करें, क्या मैं सही मायनों में जो चीज एप्रोप्रिएटली करना चाहिए वही कर रहे हैं, या अभी भी कुछ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है? अगर अभी भी मेरी तरफ से कुछ कसर रह गया है तो पहले मैं उसको ठीक करूं, शायद उसी की वजह से वो रिजल्ट आ रहा है। अगर नहीं तो लीव इट टू कर्मा, हो सकता है कुछ 10-20% हमारे कार्मिक अकाउंट्स के कारण भी हो सकता है, लेकिन सारा जीवन कार्मिक अकाउंट नहीं चलता है, वो ठीक हो जाएगा थोड़े दिनों में। लेकिन हम अपनी धारणा ना छोड़ें, क्योंकि हमें खुश रहना है, हमें स्वस्थ रहना है। कभी भी हम अच्छे हैं और सारा रिजल्ट सारा जीवन बुरा ही आ रहा है, ये नहीं हो सकता। थोड़े समय एकाध चीजों में हो सकता है पर बाद में वो ठीक हो जाता है। जैसे आप मानिए एक व्यक्ति है जो हमेशा बहुत अच्छाई समझते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, अच्छा बात करते हैं, उनके अंदर भावनाएं भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन किसी कारणवश एक बार उन्होंने ऑफिस में बहुत जोर से कस के किसी को डांट दिया। एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, उन्होंने किसी को डांट दिया तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है? इन्होंने कहा इसलिए हम चुप रह गए, इन्होंने कहा इसलिए हम सह गए, अगर इनकी जगह कोई और होता ना तो शायद हम बर्दाश्त नहीं करते। क्योंकि जो हमेशा अच्छे स्वभाव रखते हैं वो अगर कभी डांट भी दे तो किसी को बुरा नहीं लगता है। हाँ, उस समय थोड़ा खराब लगेगा, परंतु अंदर से उनको पता है कि ये बुरे नहीं है, इनके भाव गलत नहीं है, पता है। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसी आत्मा है जो हमेशा ही डांटते रहते हैं, हमेशा हलचल में रहते हैं, जटिल संस्कार है, बहुत शोर मचाते हैं, हमेशा ही नाराजगी और गुस्सा करते हैं, ऐसा व्यक्ति 10 बार भी प्यार से कभी बात करेंगे ना तो भी वो प्यार और मधुरता अनुभव किसी को होती नहीं है। क्या सोचें, क्या वाइब्रेशंस क्या आते हैं, वो फील ही नहीं होता है। क्यों? उस आत्मा के अंदर जो वृत्ति है, वाइब्रेशंस वृत्ति से आते हैं। भले अच्छे स्वभाव माना सरल स्वभाव वाली आत्मा, कोई मधुरता संपन्न आत्मा कभी कुछ स्ट्रांग भी हो जाए तो भी लोग उनका साथ देंगे, इतना बुरा नहीं लगता है। लेकिन अगर विपरीत संस्कारों वाली आत्मा, जटिल संस्कारों वाली आत्मा, क्रोधी आत्मा, अहंकारी आत्मा, अगर प्यार से भी बोलेंगे ना लोग उसको प्यार समझेंगे नहीं। तो बात क्या है, हम ऊपर से एक्सप्रेस क्या कर रहे हैं वो बात नहीं है, पर हमारी वास्तविकता क्या है, सारे रिलेशंस उसके आधार पर हैं। आपको पता है हम जब हम कोई भी व्यवहार करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहीं से गुजर रहे हैं, हमें एक बात का खास ख्याल रखना चाहिए, हम कोई भी कर्म ऐसा नहीं करें जिससे किसी के मन को दुख पहुंचता हो, एटलीस्ट इंटेंशनली तो नहीं होना चाहिए, इंटेंशनली नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी के मन को हमारे कर्म से दुख पहुंचता है तो क्या होगा? क्या हो सकता है आप बताइए, क्या हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है? कभी चिंतन किया है इस बात पर? हम कितनी आत्माओं को यू ही कुछ बोल देते हैं, यू ही आंख दिखा देते हैं, यू ही कुछ कह देते हैं। कभी सोचा है हम किसी के मन को अगर दुखाते हैं, हमारे बोल या हमारे संकल्प या हमारे कोई कर्म किसी के मन को अगर दुख पहुंचाता है तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है जी? हाँ, जो नए नए बच्चे हैं ना इस ईश्वर के घर में आए हैं, जो रेगुलर वैसे नहीं आते हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे क्या होता है, क्या हो सकता है। हाँ जी, हाँ आप सोचो, जैसे अक्सर करके मैंने कहीं सुना था कि मान लो किसी का फोन बजता है, अक्सर फोन बज जाता है, तो फोन बजता है तो लोग क्या कहते हैं कि अरे फोन बज रहा है, फोन बज रहा है। एक तो सब उनकी ओर मुड़ के देखेंगे कहां से बज रहा है, और फिर उनको घूर कर देखेंगे, फिर उसके बाद जब तक वो बंद नहीं करते हैं उसको तब तक उनको देखते ही रहेंगे। और वो व्यक्ति जिसका फोन बजा है वो डर के मारे कांपता है, और जो बंद हो सकता है फोन उसको समझ ही नहीं आता बंद कैसे हो रहा है, जबकि वो रोज उसको ऑपरेट करते हैं, घबरा जाते हैं। सभी की नेगेटिव एनर्जी मिल करके उसको जो आता है ना उस परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट करते हैं। ऐसे ही जब भी हम किसी के मन का दुख का कारण बनते हैं, देखिए दो तरीके से हम किसी को दुखी कर सकते हैं, या तो उस आत्मा की ही कोई नेचर ऐसी है वो दुखी ही रहते हैं, उनकी आदत है, उनको चाहे कितना भी संतुष्ट करने की कोशिश करें वो असंतुष्टता उनके अपनी नेचर के कारण है, उनकी अपनी कॉन्शियसनेस में संतुष्टता नहीं है, वो अपने संस्कारों के कारण परेशान है या असंतुष्ट है, नाराज है, दुखी है, चाहे हम कितना भी प्रयास करें। एक दूसरा, मेरा कोई कर्म ऐसा है, मेरा कोई व्यवहार ऐसा है, मेरे बोल ऐसे हैं, मेरे विचारों में कुछ ऐसा है जो उस आत्मा को दुखी कर रहा है, तो क्या होगा? उनके जो मेरे कारण से जो उनको दुख पहुंचा वो एनर्जी क्रिएट होगी। कैसी एनर्जी क्रिएट होगी? पॉजिटिव तो नहीं होगी। कैसी होगी? कैसी होगी? नेगेटिव होगी। अब वो जब तक उस बात को अपने मन में चलाएंगे, क्योंकि थॉट्स क्या है? एनर्जी है। आत्मा के अंदर हमारी आत्मशक्ति जो मन की शक्ति है उसके अंदर थॉट क्रिएट करना क्या होता है? उसके अंदर ये सूक्ष्म शक्ति है हमारी आत्मा, ये जो डिवाइन लाइट है हम, वो एक सूक्ष्म शक्ति है, उसके अंदर जो कुछ भी होगा वो ऊर्जा लेवल पर ही होना है, एनर्जी लेवल पर ही होना है, क्योंकि आत्मशक्ति ऊर्जा शक्ति है। तो थॉट क्रिएट हो रहा है मतलब ऊर्जा क्रिएट हो रही है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं मतलब हम पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं मतलब हम नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। अगर किसी के अंदर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है तो उसकी एनर्जी कहां आएगी? मेरी तरफ आएगी। क्यों? मैंने क्रिएट करवाया था। फिर जो हमारे जीवन में जो अच्छा वाला जीवन चल रहा था उसमें कोई ना कोई विघ्न आएंगे, कोई ना कोई रुकावट आएगा, कोई ना कोई बात अड़चन रूप में आएगी, मेरी मनोस्थिति खराब होगी। ये सब हो सकता है अगर किसी के मन, हम किसी को दुखी करते हैं और वो वाइब्रेशंस हमारे तक पहुंचते हैं। तो तब किसी किसी के मन में आता है हमने तो कुछ किया ही नहीं था, अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, अचानक ये कैसे विघ्न आ रहे हैं? अभी तो हमने किसी को, एक साल से तो हमने कुछ भी नहीं किया, छह मास से तो हमने किसी के लिए कोई बुरा नहीं किया, पहले कभी करते थे पर अब तो हम ठीक हो गए हैं, अब क्यों विघ्न आ रहे हैं? क्योंकि कभी कभी जब कुछ पपीते का बीज होता है, कुछ आम का भी बीज होता है, कोई कर्म होते हैं जो जल्दी रिजल्ट देते हैं, कोई कर्म होते हैं जो लेट फल देता है, लेट पनपता है। तो कार्मिक अकाउंट्स इस प्रकार से चलते हैं। इसलिए खास 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 ख्याल रखना है कि हमारे कर्म के द्वारा किसी के भी मन को दुख नहीं अनुभव हो। उसके बाद की बात है कि हम किसी को कितना सुख देते हैं, हम लोग एक बहुत अच्छी बात सुनते हैं ईश्वरीय वाणी में कि परमात्मा कहते हैं अगर हमारे विचारों से, अगर हमारे मन के संकल्पों से हम किसी को दुखी करते हैं या किसी के लिए उल्टा सोचते हैं, कुछ गलत सोचते हैं, अप्रिय बात, अकल्याणकारी बात सोचते हैं, तो ऐसा मन कभी भी शांत, खुश और हल्का नहीं रह सकता, शक्तिशाली नहीं बन सकता। अगर हमारी वाणी किसी को पिंच करती है, अगर हमारी वाणी किसी को दुख देती है, तो हो सकता है किसी की वाणी हमको बार बार दुख देती रहेगी, हमको पिंच करती रहेगी। और अगर हमारे हाथ पांव से किए हुए कर्म किसी को दुखी करते हैं, तो किसी के हाथ पांव से किए हुए कर्म हमारे पास लौटेंगे। और ये होता है, ऐसा कर्म का सिद्धांत है, सुबह भी हमने चर्चा की, क्योंकि कर्म कभी निष्फल नहीं होता है, उसका कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकलता है। तो हम मन से करें, वाणी से करें या वैसे करें, कर्म हम हर सेकंड कर रहे हैं। तो अगर मुझे रिलेशंस अच्छे रखने हैं, रिलेशंस क्या है? एनर्जी एक्सचेंज। जिस व्यक्ति के साथ हमारा एनर्जी एक्सचेंज अच्छा है, अर्थात ट्रस्ट है, या हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं, उनके बारे में कल्याण के लिए सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, वैल्यू बेस्ड थॉट्स क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग है, तो वो रिलेशन मेरा अच्छा है। और जिस रिलेशन के बीच में एनर्जी नेगेटिव है, वो रिलेशन कैसा होगा? वो रिलेशन कैसा होगा? कैसा होगा? क्योंकि रिलेशनशिप और कुछ नहीं, केवल एनर्जी एक्सचेंज है। तो जैसे ही हमने एनर्जी को चेंज किया, रिलेशनशिप बदल जाएगा, क्वालिटी ऑफ एनर्जी बदलेंगे। अगर आप किसी भी रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं, आप चाहे उनको कितना मर्जी गिफ्ट दे दीजिए, दुकान से लाकर गिफ्ट देना बहुत आसान है, क्योंकि पैसा तो है ही ना सबके पास, कोई भी चीज खरीद कर दे सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रिलेशंस ऐसे ठीक नहीं होते हैं। आप कितनी भी दावत करवा दीजिए, कितना अच्छा खाना खिला दो, कितने अच्छे कपड़े लेकर के आप उनको दे दीजिए, कोई महंगी गिफ्ट भी, ज्वेलरी भी दे सकते हैं, पर रिलेशंस को अगर ठीक करना है, कोई संबंध को मुझे ठीक करना है, बेहतर बनाना है, ये चीजें काम नहीं करेंगी। उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने अंदर से उस आत्मा के प्रति कुछ गिफ्ट्स भेजने पड़ेंगे, तब वो आत्मा खुश होगी। कौन से गिफ्ट्स भेजेंगे? सद्भावना, फॉरगिवनेस, दाता बन देने का संस्कार। वो दे ना दे, मैं शांति दूंगी। वो दे ना दे, हम क्या करते हैं? देखिए, जैसे कहा कर्म का फल लौटता है, हम क्या करते हैं? हम इक्वेशन चेंज कर देते हैं। हम सोचते हैं जिसको देखकर हम मुस्कुरा रहे हैं ना, वही मेरे को देखकर मुस्कुराना चाहिए। इक्वेशन ऐसा काम नहीं करता है। आप मुस्कुराते रहो, लोग आपको देखकर मुस्कुराते रहेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? जिसको हम सहयोग दे रहे हैं ना, वहीं से सहयोग वापस आना चाहिए, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसे इक्वेशन काम नहीं करता। कर्म का सिद्धांत कहता है आप करते रहो, जब आपको आवश्यकता होगी, कहीं से भी आएगा, आएगा जरूर सहयोग। ये कर्म का सिद्धांत है। लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जहां से हम दे रहे हैं, जहां वहां से वो लौटाना चाहिए। लेकिन उसके बीच में कार्मिक अकाउंट्स भी हैं, इसलिए वो ऐसे काम नहीं करता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन, लोग कहते हैं एक्सपेक्टेशन, सुबह भी किसी सिस्टर ने बोला एक्सपेक्टेशंस करने, जो भरपूर आत्मा होती है ना, वो एक्सपेक्ट नहीं करती है। आपको देना है नहीं देना, वो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी मान्यता है। मेरे पास बहुत है, भरपूर स्टॉक है सम्मान का, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो मेरी आदत है सम्मान देना। सहयोग देना, वो तो मेरे नेचर में है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सहयोग देने में, वो तो मैं सदा देता हूं, वे तो मेरी आदत है। खुशी देना, मुस्कुराना, मैं तो सदा मुस्कुराती रहती हूं। ऐसी आत्मा जो भरपूर होती है उसको एक्सपेक्टेशन कम रहती है, जिसको अब जिसके अंदर अपना सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छा होता है ना, अपनी नजरों में अपनी वैल्यू अगर अच्छी है, आपको पता है सत्यता क्या है? आज के समय में सामने से कोई हमको कुछ कहते तो हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी नजरों में भी हमारी वैल्यू कुछ खास नहीं होती है। समझ रहे हैं ये बात? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आप साइलेंट क्यों हैं? नहीं हुआ? कई बार मान लीजिए अगर कोई कहते हैं कि आपको ना बहुत गुस्सा आता है, आप क्यों ऐसा करते हो, क्यों इतना गुस्सा करते हो? सामने से कोई कहता है ना, हमें लगता है अच्छा सिर्फ मैं ही गुस्सा करती हूँ क्या, आपको गुस्सा नहीं आता, सारी दुनिया गुस्सा करती है, एक मेरा ही गुस्सा आपको खराब लगता है, वगैरह 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 वगैरह। हम स्वीकार नहीं करते हैं सामने वाली आत्मा कोई हमें कुछ पॉइंट आउट करे, हमारी कोई कमी बताए, कमजोरी बताए, हमें अच्छा नहीं लगता है। इन्होंने बोला कैसे, ये कोई दूध के धूले हैं क्या, इन्होंने कैसे बोल दिया? लेकिन जब वो अकेले होते हैं, उनके अंदर ऑडियो वीडियो चल रहा होता है, तो क्या चलता है? पता नहीं मेरे को इतना गुस्सा क्यों आता है, पता नहीं मैं शांति क्यों नहीं, उस समय मैं थोड़ा चुप क्यों नहीं रह सकती थी, पता नहीं मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, मतलब खुद के ऊपर ही कई बार गुस्सा आ रहा होता है। आजकल ऐसा समय है ना, एक होता है दूसरों पर गुस्सा आना, उसके अलावा खुद पर भी गुस्सा आता है लोगों को। तो जो खुद के हमारी नजरों में हमारी वैल्यू अच्छी होनी जरूरी है, तभी हमारा अपने से रिश्ता अच्छा होगा। हमारी नजरों में हमारी वैल्यू तब अच्छी होगी तब हमारे मन में शांति हो, जब हमारे मन में सुख की अनुभूति हो, मन शक्तिशाली हो, पॉजिटिव थिंकिंग ओवरऑल कर लेते हैं, तब हमारी नजरों में हमारी वैल्यू जब अच्छी होती है, हमारे मन का वातावरण जब अच्छा होता है, तो हमारा ही सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छा होता है। जिसका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम अच्छा होता है ना, सामने से कोई कम रिस्पेक्ट दे या ना दे फर्क कम पड़ता है। लेकिन अगर मेरी ही नजरों में मेरी वैल्यू कुछ खास नहीं है, मेरा ही सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन है और सामने वाले भी दे नहीं रहे हैं, तो मेरा काम कैसे चलेगा? फिर क्या होता है? क्योंकि देखो कोई भी मनुष्य आत्मा ना प्यार के बिना, ना स्नेह के बिना, ना रिस्पेक्ट के बिना, वो इन अनुभूतियों के बिना नहीं रह सकते हैं। तो जब मुझे अंदर से वो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ एस्टीम, वो प्यार, वो स्नेह, वो शांति, वो शक्ति जब हमारे अंदर हमें अनुभव नहीं होता है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन शिफ्ट हो जाती है बाहर की तरफ। आप मुझे शांति दो, आप ऐसा करो तो मैं खुश हो जाऊं, आप ऐसा करेंगे तो हम ठीक रहेंगे, आप नहीं करेंगे तो हमें दिक्कत होगी, फिर हम ऐसे ऐसे करते हैं। शांति दो, शक्ति दो, कुछ तो वैल्यू रखो मेरी, कुछ तो हमारी रिस्पेक्ट करो, हमारी कोई वैल्यू नहीं है क्या, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है क्या, हमें तो कोई कुछ समझता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी तो बैटरी, उनकी अपनी बैटरी भी तो फुल है। आपको पता है आज संसार में बहुत सारे डिस्चार्ज्ड बैटरीज घूम रहे हैं। आज अधिकतर लोगों की मन की शांति, शक्ति, खुशी, उमंग, उत्साह, इसका बैटरी थोड़ा लो है, और हम उनसे भी एक्सपेक्ट करते हैं आप हमें भी दो। वो बिचारी आत्मा, उनके पास उतना ही है कि खुद का काम थोड़ा बहुत चला रही है, और हम कहते हैं आप हमें भी दो। कैसे देंगे हम? क्यों किसी से अपने अपने सुख के लिए, अपनी शांति के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट क्यों होना है? क्या मेरे अंदर का खजाना मुझे जागृत करना नहीं आता? हम सबके अंदर ये चीजें नेचुरली हैं, हम बने ही उससे हैं, हम सतोगुणी आत्माएं हैं, हमारे अंदर सात गुण, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ये हम नेचुरली हम इससे बने हुए हैं, हम सबके अंदर है। लेकिन आज हमें वो अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ऊपर मन बुद्धि संस्कारों में कहीं ना कहीं परत जम गई है। कौन सी परत? थोड़ी वेस्टेज की और थोड़ी नेगेटिविटी की। बस थोड़ी सी डस्टिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। मेडिटेशन वो प्रक्रिया है जो अंदर की क्लीनलीनेस को बनाती है। जितना अंदर साफ सुथरा रहेगा, अच्छा एक बात बताइए, आपको ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए जितनी बार हम अंदर कुछ सोच के बाहर से कुछ बोलते हैं उतनी बार हमारी आत्मारूपी बैटरी कमजोर हो रही है और हमारी ऑनेस्टी लॉयल्टी सब डाउन होता है, बार 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 डाउन, हमारी इंटेग्रिटी पर सवाल उठता है, हमारी सत्यता पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि हमारी सत्यता में कमी आ रही है, क्योंकि हम सोच कुछ रहे हैं और बोल कुछ रहे हैं। तो आप में से कौन कौन है जो थोड़ा प्रयास करेंगे आज से कि हम अंदर और मुख की बात को मैच करेंगे, टैली करेंगे? क्योंकि देखो नहीं करेंगे तो क्या होगा, थैंक यू सो मच, नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी आत्मा कमजोर होती चली जाएगी। इसलिए अपनी खातिर हमें उसको मैच करना है, ठीक है ना? नहीं तो अगर हम नहीं मैच करेंगे ना तो सामने वाले को तो वाइब्रेशंस वैसे भी पहुंच रहे हैं, आप चाहे बताओ या नहीं बताओ। कम्युनिकेशन दूसरी बात, एक तो यहां ठीक करना है। आप भले ऊपर से, मान लो कोई आपके पास भोजन कोई आता है, आप भोजन के लिए पूछते हैं, आपको पता है आपको लेट हो चुका है, आपका भोजन हो चुका है, लेकिन फिर भी वो आ गए, लेट हो गए, और फिर उसके बाद हम कहते हैं खाना तो खाएंगे ना, बेमन से कह रहे हैं खाना तो खाएंगे ना, खाना खा के जाइए। उसके बाद अगर वो हां करते तो हमारी स्थिति बिगड़ती है, काम करते हैं, बनाकर भी देते हैं, पर एनर्जी हमारी नेगेटिव थॉट से भर जाती है, क्या है, अभी अभी है, थके हुए हैं, इतना लेट हो गया, क्यों नहीं ऐसा। इससे अच्छा है आप उनको स्ट्रेट साफ प्यार से और सभ्यता और सम्मान के साथ कह सकते हैं, आज तो चलो लेट आए आप, हो सकता है आपको कोई कार्य हो, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ना, आप भोजन जरूर करके जाना, बोल सकते हैं ना। सम्मान और सभ्यता को बनाए रखते हुए, स्नेह से अंदर जो है उसको प्यार से अगर रखा जाए तो सामने वाले को वाइब्रेशंस इतनी साफ सुथरी मिलेंगी कि वो एक्सेप्ट करेंगे, आपकी ऑनेस्टी को वो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार, सभी तो नहीं करते पर कई बार हम करते हैं, दूसरों को प्लीज खुश करने के लिए हम कहते हैं नहीं नहीं खाना खा के जाइएगा आप, फिर उसके बाद एनर्जी कुछ और भेजते हैं और फिर बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। इसमें क्या होता है, उनको खुश कर दिया, अपने को कमजोर कर दिया। अच्छा मान लीजिए इसका उल्टा हो, इसका रिवर्स हो, आप किसी के घर जाते हैं और वो बहुत थके हुए हैं, टाइम लेट हो गया या कोई भी कारण है। पिछली बार आपके घर में वो जब आए थे, राजमा भी था, कुछ और भी था, पनीर की सब्जी भी थी, मीठा भी बहुत बढ़िया वाला था, आपने बहुत कुछ बनाकर उनको दिया था प्लेटर में। इस बार आप गए तो इतना अच्छा नहीं था, मेन्यू थोड़ा सा सिंपल था, अच्छा तो था पर सिंपल था, या हो सकता है आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कोई कारण हो सकता है आज वो इतना नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो आपको कहें बहन जी अगली बार तो आप आएंगे ना तो भोजन जरूर करके जाना, आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं ना, मंजूर नहीं होता है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए, कहा ना सरल स्वभाव, इट्स ओके, लेट पीपल बी ऑनेस्ट विथ यू। एक तो खुद ऑनेस्ट रहना है, दूसरा सिर्फ भोजन की बात नहीं है, वो तो एक एग्जाम्पल था, कोई भी कार्य करते समय अंदर स्वच्छ वातावरण से जो भी बात हम कहेंगे वो सामने वाली आत्मा को बहुत प्योरिटी के साथ बहुत प्यार से एक्सेप्ट करेंगे। हाँ अगर नाराज भी हो जाते हैं ना, वो थोड़ा समय का होगा, बाद में वो समझ जाएंगे उस बात को। और अगर लोग हमसे ऑनेस्टली कोई बात अपनी रख देते हैं सामने, तब भी हमारे अंदर इतनी शक्ति हो कि हम उसको स्वीकार कर पाए। पर अगर हम सिर्फ खुश करते हैं तो हमें भी आदत पड़ जाएगी सिर्फ ऊपरी ऊपरी चीजों से खुश होने की, ऐसा ऐसा करेंगे तो खुश रहेंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अगर कोई प्यार से कहता है कि आज तो बहुत टाइम हो गया है, नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो जरूर हम साथ में भोजन करेंगे, आपको ओके है, चलेगा? चलेगा या बुरा लगेगा, या हम कैलकुलेट करेंगे पिछली बार हमने तो ऐसा 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 किया था, देखो आज ये क्या कर रहे हैं? नहीं, लेट पीपल बी ऑनेस्ट, यू बी ऑनेस्ट। रिलेशंस इसी प्रकार से बनते हैं और संभलते हैं। पहले जमाने में ये चीजें बहुत नेचुरल होती थी, सीधे सीधे बात करते थे, कैलकुलेटिव बिहेवियर नहीं होता था। आपको पता है ना, आपके बड़े बुजुर्ग जो घर में हैं, वो हर बात सीधी कहते हैं, उनको ऐसे 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 करके नहीं बोलना आता है, है ऐसा? हाँ, कोई भी बात है बिल्कुल फ्लैट एक्सप्रेशन के साथ जो अंदर है वो बाहर से साफ साफ बोल देते हैं। आजकल के जमाने में ऐसा नहीं होता है, उसको थोड़ा सा रैपर में रैप करके, कैलकुलेशंस के साथ, साइज और क्वांटिटी फिक्स करके हम कोई बात देते हैं। लेकिन साफ सुथरी बात, आत्मा से निकली हुई बात आत्मा तक पहुंचती है, नहीं लगेगा बुरा। लोग जब ये समझ जाएंगे कि आपके नेचर में क्या है, सत्यता है, आपकी वास्तविकता क्या है, ऑनेस्टी है, तो फिर उसके बाद उनको बुरा नहीं लगेगा। बुरा तब लगेगा जब हम अंदर कुछ सोचते हैं बाहर कुछ बोलते हैं, तब हमें सारा जीवन उनको संभालते रहना पड़ेगा। अभी बुरा ना लग जाए, ये बुरा ना लग जाए, वो बुरा ना लग जाए। अब तो ऐसा हो गया, घरों में जब फंक्शन होते हैं ना, लोगों को फंक्शन की तैयारी के साथ एक और तैयारी भी करनी पड़ती है, कौन सी? ये आप लोग बेहतर जानते हैं, कौन सी? किसी को बुरा ना लग जाए, इसको ये बुरा लग सकता है, इसको ये बुरा। हम बुरा लगने को बचाने में कितनी एनर्जी डालते हैं, इससे अच्छा साफ सुथरी वाइब्रेशंस के साथ सच्ची मेहनत करेंगे, निश्चिंत रह सकते हैं, कोई बुरा नहीं मानेगा, मानेगा भी तो ठीक हो जाएगा, इट्स ओके। रिश्ते ऐसे निभाने हैं, ऊपर 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 से जब हम खुश करते रहेंगे तो सारा जीवन डर में बिताएंगे, आज वो आने वाले हैं पता नहीं क्या होगा। लेकिन जो आने वाला व्यक्ति है, अगर उसको ये पता हो कि आपकी ओरिजिनैलिटी क्या है, अगर उसमें सत्यता है, उसमें स्नेह है, उसमें सद्भावना है, उसमें लॉयल्टी है, वो भी जानते हैं कि आप क्या हो, तो रिश्ते बिगड़ने के चांसेस कम रहते हैं। आज वैसे भी तो देखो हम कितनी कोशिश करते हैं बुरा ना माने, बुरा ना माने, बुरा ना माने, क्या मान नहीं रहे लोग? नहीं मान रहे, कदम कदम पर मान रहे हैं, तो क्यों हम एनर्जी को वेस्ट करें उस तरफ? तीसरी बात, ब्लेसिंग्स। हमें जब रिश्तों की बात आती है तो ब्लेसिंग्स का खास ध्यान रखना है, दुआओं का बहुत बड़ा रोल है हमारे रिश्ते नातों के अंदर। जैसे मान लो आप अगर किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, अक्सर करके लोग क्या प्रिपेयर कर, अब जैसे दिवाली आएगी, दिवाली में एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, तो गिफ्ट देते हैं तो आजकल तो लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाते हैं, किसको कितने रुपए का गिफ्ट देना है, और वो किस पर आधारित होगा, पिछले साल उन्होंने क्या दिया था और वो कितने का था लगभग, तो उससे वो आधार बनता है हमारे गिफ्ट देने का। लेकिन अगर मान लीजिए आपको पता हो, 100% पता है, इस बार जो गिफ्ट आप देने वाले हैं वो चार दिन के बाद लौट के आपके पास आने वाला है, कारण किसी कारण से वो चार दिन के बाद आपके पास जरूर वापस आएगा, तब आप कैसा गिफ्ट देंगे? तब आप कैसा देंगे? सबसे अच्छा गिफ्ट देंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि वो गिफ्ट घूमकर आपके पास वापस आने वाला है। ऐसे ही दुआएं हैं, ऐसे ही आशीर्वचन है, आशीर्वाद है, और स्वच्छ सोच है। आप जितनी सुखद दुआएं देंगे, जितनी ब्लेसिंग्स देंगे, आप दो ब्लेसिंग्स, आजकल ब्लेसिंग्स का जमाना खत्म होता जा रहा है, दुआएं दीजिए। क्यों? क्योंकि जो देंगे वो लौट के, सुबह बात हुई थी ना, कर्म निष्फल नहीं होता है, आप देंगे वो वापस आपके पास आने वाला है। परमात्मा कहते हैं कि दुआ देना ही वास्तव में दुआ लेना है, दुआ देना देना नहीं है, वो लेना है, तो आपको पता है वो वापस आने वाला है, तो इसलिए खूब दो। अपना सदा सुखी रहना। पहले जमाने में तो ऐसा होता था, लोग बहुत चरण छूते थे, झुककर अच्छे से चरण छूते थे, और कोई कोई तो लेट कर भी करते थे, चरण छूते थे, और उसके बाद देने वाला व्यक्ति भी दोनों हाथों से उनके ऊपर हाथ रखकर खूब सारी दिल से और मुख से भी बोलते थे, खुश रहो, आबाद रहो, सदा सुख शांति से भरपूर हो, ऐसे कहते थे। अब झुकने वाले भी आधा ही झुकते हैं, हाथ भी थोड़ा सा ही लगा ना लगा बराबर, और देने वाले भी कहते हैं हाथ भी नहीं उठता है। क्यों? जितना गुड़ उतना मीठा, जो हम देंगे वो वापस आएगा। तो आपको पैर भी पड़ने की जरूरत नहीं है, पैर नहीं पड़िए किसी के आशीर्वाद के लिए, पैर की आपसे कम से कम ये तो हम कर सकते हैं, हमारे से आशीर्वाद लेने के लिए किसी को हमारे पैर ना छूने पड़े। हम क्या इतनी जटिल आत्माएं हैं? ठीक है, किसी किसी की संस्कृति में पैर छूना होता है, भले वो निभाइए, लेकिन उससे ज्यादा रिश्तों को अच्छा करने के लिए ब्लेसिंग्स को एक्सचेंज करना बहुत, इससे क्या होता है, उस रिश्ते के अंदर हम पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, और वो रिश्ता दिन ब दिन मजबूत होता चला जाएगा। अगर मान लीजिए जिस रिश्ते में हमारी पॉजिटिव एनर्जी का एक्सचेंज रहता है, ज्यादातर रहता है, कभी उसमें एक आध बात हो भी गई तो भी वो जल्दी ठीक हो जाएगा, जल्दी रिकवर हो जाएगा, जल्दी उसमें वो सुलझ जाएगी, बात उलझन नहीं बनेगी, लाइफ लॉन्ग का कांटा नहीं बनेगा, वो जल्दी सुलझ जाएगा, क्योंकि रिश्ता मजबूत है। ठीक है, एक हम कोई ऐसा कर्म न करें जिससे किसी के मन को दुख पहुंचे, दूसरा ब्लेसिंग्स की लेन देन जरूर करें, क्योंकि आप देंगे तो दुआ लेना है। आपने भोजन नहीं किया क्या दोपहर को? भोजन मिला नहीं? मिला था तो एनर्जी नहीं आ रही है क्या? दिल खोल के बोलो, दुआ लेना है। ठीक है, इसलिए जितनी दुआ, किसी और के वजह से नहीं, इसलिए देना कि आपका मन अच्छा रहे, दुआओं से भरा हुआ मन ही दुआ दे सकता है, और जो मन दुआ देता है ना, वो मन अच्छा रहता है, वो मन खुश रहता है, उस मन में ताकत रहती है जीवन की परिस्थितियों को पार करने की, वो मन कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। मार्क माय वर्ड्स, वो मन जो दुआएं देता है, दुआएं लेता है, वो कभी डिप्रेसिव नहीं हो सकता। ये डिप्रेशन के लिए प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन, पहले से ही प्रिवेंट कर लो उसको। उसके बाद कम्युनिकेशन, खास ध्यान रखना रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन का, वार्तालाप का बहुत महत्व है। कई बार हम छोड़ देते हैं, मान लीजिए हमने देखा किसी को हमारी बात बुरी लगी, हमें पता लग गया, क्योंकि तुरंत पता लगता है उस व्यक्ति को, जैसे ही हमारी कोई बात बुरी लगती है ना, हमारे को पता लग जाता है कि मेरी बात से हुआ है, लेकिन हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना, अपने आप ठीक हो जाएंगे, रो रहे रोने दो, मूड ऑफ है होने दो, अपने आप ठीक हो जाएंगे। छोड़ना नहीं है, छोड़ो नहीं, क्योंकि छोड़ने से क्या होता है, वातावरण बनता है। आप जितनी देर छोड़ देंगे अपने आप ठीक हो जाएंगे, और ऐसा तो रोज होता है, और पता नहीं कितने सालों से हो रहा है, और कितनी बातें किसी को हमारी बुरी लग रही है, और हम कुछ उसका इलाज करते भी नहीं है, तो वो छोड़ने से क्या होता है, उनके मन के जो भारी संकल्प क्रिएट हो रहे हैं, उससे घर का वातावरण बन रहा है, ऑफिस का वातावरण बन रहा है, और वो नेगेटिव एनर्जी भारी हो रही है, वातावरण को भारी कर रही है, इसीलिए उस नेगेटिव वातावरण के अंदर कोई भी आत्मा रहना पसंद नहीं करती है। मान लीजिए किसी घर में या किसी ऑफिस के वातावरण में नेगेटिव एनर्जी है, ऑफिस आने का किसी का दिल ही नहीं करेगा, घर में रहने का दिल ही नहीं करेगा, बच्चे कहेंगे हम जा रहे हैं खेलने, वो घर में टिकते ही नहीं, मदर्स कहेंगी हम सब्जी लेने जा रहे हैं, हम वॉकिंग पे जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, हम फ्रेंड्स के घर जा रहे हैं, रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं, मन घर में नहीं लग रहा है। और भाई लोग कहेंगे ऑफिस में बहुत काम था, रात को आते हैं सिर्फ सोने के लिए, सुबह उठ के फिर चले जाते, कहते जब तक हम ऑफिस में ठीक है। क्यों ऐसा होता? क्योंकि उस घर के अंदर या उस ऑफिस के अंदर या उस पड़ोस के अंदर जो वातावरण है वो बहुत भारी है, और मनुष्य आत्माएं भारी वातावरण में रहना पसंद नहीं करती हैं। तो छोड़ना नहीं है, उसको वातावरण बनने से पहले रिजॉल्व करना है। जैसे ही आपको लगे आपकी कोई बात चुभ गई, आपकी किसी बात से उनको बुरा लगा, भले आपने इंटेंशनली नहीं भी कहा हो, तो भी उनसे बात करो, अरे मुझे लगता है मेरी इस बात से आपको बुरा लगा ना, चलो मेरे से गलती हो गई, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, चलिए मुझे पता है मेरा यह व्यवहार आपको नहीं पसंद आया, चलिए ऐसा करते, देखो गलती तो आपकी भी थी ना, आप मानते हो ना इस बात को, थोड़ी बहुत गलती तो आपकी भी थी, मेरी भी थी परंतु आपकी भी थी, ऐसा करें आप मेरे को हेल्प करो, मैं आपको हेल्प करूं, थोड़ा सा हम इसको और बेहतर बना देंगे, ठीक है अभी आप ठीक हो जाओ, आई एम सॉरी। कितना टाइम लगता है, लेकिन हम करते नहीं है, हम छोड़ देते हैं। मालूम है क्यों छोड़ते हैं? बताओ क्यों छोड़ते हैं? हाँ होते हैं अपने आप ठीक हो जाए, क्यों छोड़ते हैं बताइए? हमारा अहंकार, हमारा ईगो बार बार आकर खड़ा हो जाता है बीच में, मैं क्यों, मुझे ही क्यों, हमेशा मैं ही क्यों। अरे हमेशा करने को कौन कहता है, लेकिन जहां मेरा करना बनता है वहां तो मुझे करना चाहिए। हम लोग कभी कभी कहते हैं ना सहनशीलता अच्छी शक्ति है, इसका विकास करो तो आत्मा में ताकत आती है, तो लोग कहते हैं हम ही हमेशा सहन करें क्या। अरे हमेशा करने को कौन कहता है, लेकिन जहां मेरे थोड़े से चुप रहने से कोई काम हो रहा है, जहां मेरे थोड़ा सा सहन करने से कोई कार्य बन रहा है, कोई नुकसान बच रहा है, कोई माहौल बिगड़ने से बच रहा है, किसी की मनोअवस्था को मदद मिल रही है, जहां मेरा बनता है सहन करना, क्या मेरा वहां सहन शक्ति काम आ रही है, वहां यूज हो रहा है? हमेशा नहीं करो, लेकिन जहां करना चाहिए वहां हो रहा है क्या? इससे पता चलता है हमारे अंदर वो ताकत है या नहीं है। इसलिए कम्युनिकेशन रेगुलर, जब भी आपको पता चले कोई कार्य बिगड़ गया, कोई संबंध बिगड़ गया, कोई बात हो गई, कोई परिस्थिति उत्पन्न हो गई, आपकी किसी व्यवहार से हो गया या आपके अपनों के द्वारा कोई बात हो गई जिससे परिस्थिति बिगड़ रही है, तुरंत उसको रिजॉल्व करना चाहिए, नहीं तो वातावरण में वो लंबा समय घूमेगा और फिर वो और लंबा समय उनके मन में है, हमारे भी मन में, फिर उनके मन में जितना लंबा समय वो चलेगा उसका बोझ मेरे को आकर मेरे अकाउंट, कार्मिक अकाउंट में जमा होता रहेगा, फिर मेरे को बार बार अटकाता रहेगा कहीं ना कहीं। ठीक, मेक सेंस? हाँ मेक सेंस, करेंगे कोशिश ऐसे ही, हाँ हाँ नहीं करना, लेकिन दिल से कोशिश करना, आप कर सकते हैं। हम सब सशक्त आत्माएं हैं, हम सभी कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। ठीक है, वैसे तो इसमें से कई चीजें हमने कवर कर लिया है, सदा ये याद रखना है कोई भी चीज हमारे अंदर या हमारे बाहर होती है, हमारे आसपास होती है, आई एम द क्रिएटर, किसी की वजह से हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। अगर मैंने वो कार्मिक अकाउंट नहीं क्रिएट किया है, मेरे साथ कुछ हो जाए असंभव। हम एक दूसरे के रिलेशंस में जब आते हैं क्यों आए? क्योंकि कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट हमारा लेन देन का हिसाब है, इसीलिए आए, नहीं तो हम आसपास आ ही नहीं सकते थे। कोई भी आत्मा हमारे आसपास जन्म ले ही नहीं सकती है अगर मेरे से उसका कार्मिक अकाउंट का लेन देन नहीं है तो। अगर हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है, मदर फादर का रिलेशन है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है, सिस्टर ब्रदर का रिलेशन, कोई भी रिलेशन है, वो रिलेशंस बने ही इसलिए हैं क्योंकि कोई ना कोई वो सुखद कार्मिक अकाउंट भी हो सकता है और थोड़ा नहीं सुखद वाला भी हो सकता है, वो है इसीलिए हम आसपास आए। कई लोग कहते हैं बहन जी जब पराए ऐसे करे ना मेरे को समझ आता है, इतना दुख नहीं होता, पर जब अपने ऐसा करते हैं ना मुझे बड़ा दुख होता है। अपनों ने ऐसा किया ना, अरे अपनों ने क्यों किया, क्योंकि जो अपने हैं उन्हीं के साथ अकाउंट था, मैंने चालू किया था और इसीलिए वो अपने बनकर इस समय मेरे साथ है, तो फिर अकाउंट भी कौन सेटल करेगा, बाहर वाले क्यों करेंगे, उनका कोई अकाउंट ही नहीं था आपके साथ। तो इसीलिए आई एम द क्रिएटर, हमारे भाग्य को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है, कोई भी हाथ नहीं लगा सकता ना, हमारे इतनी ताकत किसी में नहीं है कि हमारे भाग्य को बिगाड़ दे या हमारे भाग्य को बनाए, ये भी कोई नहीं कर सकता। भगवान भी हमारा भाग्य नहीं बनाते हैं, लेकिन भाग्य बनाने के लिए जो श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए उसकी शिक्षा हमें जरूर देते हैं और शक्ति देते हैं, क्योंकि हमारे कर्म के द्वारा हमारा भाग्य बनता है। हम जैसा सोचते हैं लोग वैसा हमारे प्रति सोचेंगे, हम जैसे बोलते हैं लोग हमारे प्रति वैसा बोलेंगे, हम जैसे कर्म करते हैं व्यवहार करते हैं लोगों का धीरे 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 हमारे प्रति वैसा कर्म और व्यवहार बनता जाएगा। तो हम क्रिएट कर रहे हैं, किसी के वजह से कुछ नहीं हो रहा है। आज पता है लोग यूं ही कुछ भी सोच लेते हैं, यूं ही कुछ भी बोल देते हैं, इससे उनके साथ यूं ही कुछ भी होता रहता है। क्यों होता है? क्योंकि सोचते समय बोलते समय ध्यान नहीं रखा, इसलिए जो हो गया अब वो जब वापस आता है तो मुझे दिक्कत होती है। सोचने से पहले ध्यान रखना है, बोलने से पहले भी ध्यान रखना है। शुरू शुरू में थोड़ा एफर्ट लगेगा, शुरू शुरू में मेहनत लगेगी, लेकिन धीरे धीरे जब हमारे नेचर में शामिल हो जाएगा, हम कैसे सोचते हैं, हम हमेशा ज्यादातर अच्छा सोचते हैं, मेरे हिसाब से अच्छा, आपके हिसाब से अच्छा नहीं, जो वास्तविक अच्छाई है उसके हिसाब से, वो अच्छाई से हम सोचते हैं, हम अच्छा बोलते हैं, मेरे को जो अच्छा लग रहा है वो नहीं, आपको जो अच्छा लग रहा है वो नहीं, लेकिन जो अच्छे बोल होते हैं, जो सही बोल होते हैं, जो सही विचार होते हैं, जो सही व्यवहार होते हैं, हम उस हिसाब से चल रहे हैं, तो फिर आप देखना थोड़े समय के बाद आपके पास जो कुछ वातावरण बनेगा वो अच्छा और हेल्दी बनने लगेगा, आपके रिलेशंस में बहुत अच्छी समरसता बनने लगेगी। अब कई लोग कहते हैं बहन जी हम अगर ठीक करते हैं ना लोग नाराज हो जाते हैं, जैसे अभी ब्रदर ने कहा कि हम अच्छा करते हैं लोग नाराज हो जाते हैं, या लोग हमारा फायदा उठाते हैं, लोगों को अच्छा नहीं लगता अगर हम ऐसे चलते हैं, तो आप इसको ऐसे चेक करना, एक मापदंड है उसका भी चेक करने का, एक विधि है। अगर हम जैसा भी जीवन को जी रहे हैं या जैसे भी कर्म हम करते हैं, मान लीजिए हमारे पास 10 लोगों से संपर्क है, हमारा संबंध संपर्क है, उसमें से 7 या 8 लोग मेरे से प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं, उनको मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 2-3 लोग ऐसे हैं जिनको हमेशा ही मेरे से नाराजगी रहती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अधिकतर हम ठीक चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं। थोड़ा बहुत स्कोप है इंप्रूवमेंट का, पर ज्यादातर हम ठीक चल रहे हैं, थोड़ा और ठीक कर सकते हैं। और एक है 10 लोगों के साथ हमारा संबंध संपर्क है, 7-8 लोग मेरे से नाराज रहते हैं, सिर्फ 1-2 ही हैं जो मेरे से हमेशा संतुष्ट रहते हैं और खुश रहते हैं, इसका मतलब सच में दिक्कत है, इसका मतलब मुझे अपने कर्म को टोटल ठीक करना पड़ेगा, 360 डिग्री बदलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो ऐसा है जो इतनी सारी मेजॉरिटी असंतुष्ट है, इसका मतलब मेरे कर्म ठीक ट्रैक पर नहीं है। हम इसको थोड़ा ऐसे चेक कर सकते हैं। कहा ना 2 प्रकार से लोग हमसे असंतुष्ट हो सकते हैं, एक हमारे किसी व्यवहार और कर्म के कारण वो असंतुष्ट हैं, उसमें हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम उनको भी संतुष्ट करें, दूसरा हो सकता है उनके नेचर, उनके स्वभाव, संस्कारों में असंतुष्टता है। वो कुछ भी कर लो, कोई भी करे, वो संतुष्ट नहीं होते, वो किसी से भी संतुष्ट नहीं होते, तो छोड़ दो, वो अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे थोड़े समय के बाद। हम किसी और को प्लीज करते हुए कर्म ना करें। हम कैसे कर्म करें? हम राइट कर्म करें। राइट कर्म कौन से होते हैं? जो मेरे को राइट लगे, आपको राइट लगे नहीं, जो वास्तविक राइट है, जो परमात्मा के अनुसार, जो विधाता के अनुकूल ठीक है, जो वास्तविक सत्यता पर आधारित है, हम ऐसे कर्म करें। उससे क्या होगा, वो जो दो तीन आज नाराज भी हो रहे हैं ना, कल को समझ जाएंगे। भले वो आपके सामने उसको एक्सेप्ट ना करें, परंतु आपके पीछे कहेंगे हाँ भाई जो भी है, पर मन के बुरे नहीं है, चलो जो भी वो करते हैं, क्या चीजें हमें नहीं पसंद आती है उनकी, पर ऐसी बात नहीं है, इंसान तो ठीक ही है। तो रिश्तों को संभालना, बनाना और उसको समरसता में बनाए रखना, लंबे समय तक बनाए रखना, इसमें हमारे आंतरिक जगत में कार्य करने की आवश्यकता है। क्योंकि कहा रिश्ते बाहर बाद में आते हैं, बाहर तो दिखते बाद में है, उसकी रचना हम इधर कर रहे हैं, रिश्ते वास्तव में हम इधर निभा रहे हैं। हम किसी के प्रति क्या सोचते हैं, उसके वाइब्रेशंस उस रिश्ते में जा रहा है, और या तो वो उस रिश्ते को बना रहा है या फिर उसको बिगाड़ रहा है। क्योंकि जो हम सोच रहे हैं, भले आज हम कहते हैं ध्यान रखते हैं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ध्यान रखते हैं ना, इनके सामने बोल देंगे तो इनको बुरा लगेगा, ये बात इनको कह दिया तो रूठ जाएंगे। तो ऐसे ही अपने विचारों पर ध्यान रखें, अगर मैंने ऐसा सोच लिया तो भी उस आत्मा तक वो पहुंचने वाला है, तो भी वो पहुंचने वाला है। अगर मुझे किसी रिलेशन को ठीक करना है तो लव इज द इंग्रेडिएंट। लव इज द इंग्रेडिएंट का मतलब होता है, अगर हम किसी रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, अंदर हमने शुभ भावना, प्यार और स्नेह क्रिएट किया और उसके बाद हम मेहनत कर रहे हैं उस रिश्ते को ठीक करने की, फिर तो उसकी ठीक होने की संभावना है। लेकिन अगर हम यहां प्यार, स्नेह, लव, अफेक्शन नहीं है, ऊपर ऊपर से कोशिश कर रहे हैं उसको ठीक करने की, वो कभी भी ठीक नहीं होगा। हो सकता है 10 दिन हमारी बोलचाल शुरू हो जाए, परंतु वापस वो वैसे हो जाएगा, रिश्ता ठीक नहीं होगा। आज रिलेशंस बहुत हैं लोगों के पास, लेकिन उसके अंदर कनेक्शंस बहुत वीक हैं। है ऐसा? रिलेशंस के अंदर कनेक्शन कमजोर होने का कारण है, वो जो एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए वो राइट क्वालिटी की एनर्जी नहीं एक्सचेंज हो रही है। हम रिश्तों को ठीक करने के लिए कहते हैं आओ हम दोनों बैठते हैं, चलो बात करके रिश्ता ठीक करते हैं, इट डजंट वर्क दैट वे। ऐसे ठीक नहीं होता रिश्ता। हम अपने से बात करें पहले, उधर बैठने से पहले अपने साथ बैठें, अपने साथ बैठ करके करें चलो अब हम रिश्ता ठीक करते हैं, मैं अपनी एनर्जी को ठीक करती हूं, मैं अपनी सोच को बदलती हूं, चलो मैं आज से, चलो आज के पहले जो हुआ सो हुआ, बीती सो बीती, कम से कम आज के बाद मैं अपनी एनर्जी को चेंज करती हूं, बेहतर बनाती हूं और इस रिश्ते को मजबूती देती हूं, चलो अपने साथ आज मैं काम करती हूं। सो यू नीड ओनली 1 पर्सन टू हील दैट रिलेशनशिप। आपको एक ही व्यक्ति चाहिए रिलेशन को ठीक करने के लिए। अगर मैंने ठीक कर लिया फिर तो ठीक हो जाएगा। आपने सामने वाले को कहा मैं ही क्यों करूं, मैं इसलिए करूं क्योंकि रिश्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए करूं मेरे मन की शांति बची रहे, मैं इसलिए करूं मेरा बीपी, शुगर, थायराइड ठीक रहे, मैं स्वस्थ रहूं, मैं इसलिए करूं कि जब कोई व्यक्ति आए तो घर का वातावरण सुखद हो, अच्छा हो, खुशनुमा हो, इसलिए करूं। तो रिश्ते ठीक करने के लिए कितने लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए? कौन कौन समझता है एक ही व्यक्ति चाहिए? आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हाँ वो एक ही व्यक्ति चाहिए, पहले वो तो करे? ये नहीं होने वाला है। हाँ कभी कभी सामने वाला व्यक्ति भी शुरू करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम उसमें सहयोग दे सकते हैं, लेकिन सामने वाले को केवल हम समझा सकते हैं। अगर वो समझाने के बाद भी नहीं सुनते हैं, फिर तो मैं ही काफी हूं उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, सो हाउ मेनी पीपल डू वी नीड टू हील अ रिलेशनशिप? वन, एंड दैट इज मी। आई कैन। बहुत सी चीजें हमारे हाथ में हैं। हम सोचते हैं हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ सामने वाले के हाथ में, और सामने वाला क्या सोच रहा है? हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ सामने वाले के हाथ में। तो वास्तव में देखा जाए तो किसी के भी हाथ में नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है कि सबके अपने अपने हाथ में ही है सब कुछ। ठीक है, प्रैक्टिकल या लगता है थियरी? प्रैक्टिकल है, आप करके तो देखो। हम बिना ट्राई किए ये नहीं बोल सकते इट डजंट वर्क, बिना कोशिश किए ये नहीं कह सकते इट डजंट वर्क, बिकॉज इट इज वर्किंग, इट हैज वर्कड, इट इज वर्किंग एंड इट विल वर्क। आप ट्राई तो करो, और दिल से ट्राई करना। अब ये मत कहना देखो आज हम ये चार दिन का रिट्रीट ठीक अटेंड करने के बाद घर जाकर, 11 तारीख आप लोग वापस जा रहे हैं ना शायद, 11 या 12 को, अब 12 या 13 को आएंगे पेपर। ठीक है, उस समय आपने बहुत अच्छा अच्छा बोलना शुरू किया, अच्छा अच्छा सोचना शुरू किया, तुरंत सामने से वो व्यक्ति तो वैसे ही है जैसे था 8 तारीख से पहले, तो तुरंत वो वापस करें। अब मुझे क्या करना है? अच्छा अच्छा बोलना है। दो दिन हम अच्छा अच्छा बोले, अच्छा अच्छा सोचे, क्योंकि रिट्रीट का असर तो रहेगा ना, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा कुछ हुआ ही नहीं। ये तो ऐसे है जैसे बीज बोया और बार बार उघाड़ कर देख रहे हैं, आया ही नहीं। आएगा फिर, बीज बो दीजिए, अच्छे बीज आप बो दीजिए कर्म के, फलदायी तो होना ही है, कर्म निष्फल नहीं होता है, कर्म तो फल देगा। अगर आपने अच्छा बीज बोया है, फल भी अच्छा ही निकलेगा, बिल्कुल खराब नहीं हो सकता वो फल, क्योंकि आपने बीज सही बोया है ना, और ऊपर से मन रूपी धरनी को ठीक करके बीज बोया है। ऐसे ही नहीं मन तो खराब है लेकिन हम अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, नहीं, आप यहां से मन को भी तो अच्छा करके जाने वाले हैं ना, तो मन की स्थिति भी अच्छी होगी और बीज भी अच्छा डाल रहे हैं, तो क्यों नहीं वो फलदायी होगा, होगा ही होगा। लेकिन याद रखना, कोई कोई कर्म, कोई कोई बीज आम के बीज के समान होता है, वो एकदम नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा, लेकिन जब आता, जब तक वो आम का बीज धरनी के नीचे गुप्त होता है ना, तब तक वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है, अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। और जब उसने फल देना शुरू कर दिया तो सालों साल इतना फल देगा कि पूरा गांव का गांव खा सकता है, पेट भर के खा सकता है, उसके बाद भी बचता है। ऐसे ही हम अच्छा सोचना शुरू कर दें, हम यहां से हीलिंग शुरू कर दें, आप देखना सालों साल इसका सुख हमको मिलेगा, हमारे अपनों को भी मिलने वाला है। लेकिन तुरंत एक्सपेक्ट नहीं करना, हमने किया तो दूसरे भी सुधर गए, ऐसा नहीं। निश्चिंत रहना, हो सकता है एक हफ्ता लगे, 10 दिन लगे, 6 मास लगे, साल भर लगे, हो सकता है 2 साल लग जाएं किसी को, पर कम से कम उम्मीद तो है कि हो जाएंगे। पहले तो उम्मीद भी नहीं थी, अब कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। ठीक है, करेंगे सभी मेहनत, क्या क्या करेंगे बताइए? दुआ देना ही दुआ लेना है, और क्या करेंगे? हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिससे किसी के मन को डिस्टर्बेंस हो। और तीसरा ब्लेसिंग्स तो हो गया, दुआएं हो गया, और तीसरा जी कम्युनिकेशन ठीक रखना है, छोड़ना नहीं है, भले शुरू शुरू में दिक्कत होगी लेकिन करना जरूर है, क्योंकि वही एकमात्र तरीका है वातावरण को शुद्ध, पवित्र और साफ सुथरा रखने में। ऐसे वातावरण में हम भी हेल्दी रहेंगे, शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति, थैंक यू सो मच, ओम शांति।
सब में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार,
सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार।
सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए, प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए, सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए, प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए, आपस का सहकार प्यार ही जीवन का है सार, सुखमय हो संसार, कोई जीते मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते, जुआ नहीं है ये जीवन कोई हारे कोई जीते, मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते, धरती पर सबको सुख से जीने का है अधिकार, सुखमय हो संसार,
सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय संसार, सुखमय हो संसार, सुखमय हो संसार, सुखमय हो संसार।